करीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
Did you know with CIBC Global Money Transfer, there are many ways to send money abroad? Like next day deposit to a bank account, same day cash pickup, or send it in minutes to eligible Visa cards or an Alipay wallet. The choice is yours with CIBC Global Money Transfer. Plus, enjoy a $0 CIBC transfer fee always. Visit cibc.com/transfer. Conditions and CIBC foreign exchange rates apply. CIBC, ambitions made real.
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ऑन्टेरियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660 quicktruckloop.com।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज या फिर होवे लोन,
सोचो ना बस, बिल्कुल भी होने मिलाओ फोन।
416-502-8000 स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या काख दा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000।
लाइसेंस नंबर 10845। इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
अकाल 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 मॉर्गेजेस।
चांदनी विक्टोरिया हॉल,
शादी, मंगनी, कॉर्पोरेट इवेंट, इज्तिमा, न्यू ईयर फेस्टिवल, ईद बाजार, शॉपिंग मेला या फिर कॉन्सर्ट।
फॉर ऑल एंड एनी इवेंट्स, अल्टीमेट वेन्यू,
मॉडर्न डेकोर, 1200 अफराद के बैठने की गुंजाइश,
नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फूड एंड सर्विस,
25 साल हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस,
32 rooms hotel to accommodate your guests.
Pakistani, Indian, West Indian cuisine, Chandni Victoria Hall. Call kijiye 647-965-3823. 647-965-3823.
2935 Drew Road, Mississauga, chandnivictoria.ca.
मिसिसागा और इसके आसपास रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी, ताज़ा सब्जियां, फल, मसाले, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड गोश्त और किचन की जरूरत का सब सामान, वो भी डिस्काउंट सेल प्राइस में। ओपन 7 डेज अ वीक, सुबह 10 से लेकर रात 9 बजे तक। विजिट करें मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी, 1010 ड्रीम क्रेसेंट, यूनिट 12 इन मिसिसागा, 9052861998। मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी।
स्टेशन साइट की सेल शुरू हो गई है। मिल्टन डाउनटाउन में आपकी मुनफरिद खूबसूरत रिहायशगाह, जो शर्तिया बेहतरीन कीमत $4,87,990 से शुरू हो रही है। दो टावर से मुश्तमिल स्टेशन साइट की इमारत सेंट्रल पोडियम के जरिए इंडोर और आउटडोर सहूलतें पेश करती है। मिल्टन गो स्टेशन से मुंसलिक स्टेशन साइट मिल्टन फ्यूचर मोबिलिटी हब का संग बुनियाद है, जो आपको बिना किसी रुकावट आपकी मंजिलों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। GTA के फलते फूलते सुनहरी मुस्तकबिल में अपनी इन्वेस्टमेंट को अनलॉक कीजिए और आज ही stationside.ca पर रजिस्टर कीजिए।
ये नंबर नोट कीजिए जरा, 6475109494। पूछिए क्यों? क्योंकि ये नंबर है अली याजदानी का और वो है मॉर्गेज एजेंट, और उनकी बात कुछ अलग है। पूछिए क्यों? क्योंकि अली याजदानी आपको लेके देते हैं सही रेट, सही टर्म्स के साथ सही मॉर्गेज। पूछिए क्यों? क्योंकि वो है अकाल मॉर्गेजेस के साथ।
अकाल 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 मॉर्गेजेस।
लाइसेंस नंबर 10845। इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड। अब हम पूछे कुछ, नंबर याद है ना आपको, 6475109494। अली याजदानी।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
आपके घर की खूबसूरती आपका ज़ौक। खूबसूरत दिलकश किचन कैबिनेट्स, काउंटर टॉप्स, बाथरूम्स, कैबिनेट्स एंड काउंटर्स,
राइट कस्टम कैबिनेटरी इंक,
यूरोपियन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी किस्म का रेजिडेंशियल या कमर्शियल, वुडवर्क, 3D स्क्रीन पर कस्टम डिजाइन का इंतखाब कीजिए। जदीद दौर का तकाजा,
राइट कस्टम कैबिनेटरी इंक।
स्पेशल प्रोमो 12 मंथ्स, नो इंटरेस्ट, नो पेमेंट। काम आज करवाइए, पेमेंट 12 महीने में कीजिए। राइट कस्टम कैबिनेटरी इंक, 6473008473।
अदनान अलवी, प्रेसिडेंट लाइफ टाइम ग्रुप। अदनान अलवी को कौन नहीं जानता। आप पिछले 15 सालों से अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इनकम और अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। आपके लिए हमेशा यूनिक और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं। अगर आप आज की बदलती हुई रियल एस्टेट मार्केट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं, तो आज ही अदनान अलवी से राब्ता करें।
416-301-0249।
नान कबाब, मॉडर्न अफगानी किचन, लजीज अफगानी ग्रिल कबाब, चपली कबाब, चौपान कबाब, लैम्ब शैंक, चिकन कोरमा प्लेट, फैमिली प्लेटर, कबाब रैप, फ्राइज, मंटू, बोलानी, फिरनी और सबके लिए बहुत से मजेदार खाने। अब आपके शहर मिसिसागा में एक और नई लोकेशन के साथ 5042 सैटेलाइट ड्राइव, यूनिट F3, मिसिसागा। फॉर ऑर्डर्स एंड रिजर्वेशंस विजिट nankebab.ca।
जी सामने नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश कर्रम सेहतमंद होंगे। भाई हमारा और आपका साथ आज भी रहेगा 5:30 बजे तक। और आज वेंसडे का दिन है, नवंबर की 22 तारीख और +5 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त हमारे मोहल्ले में हो रहा है। आज शाम को भाई 7 डिग्री तक जाएगा, फिर कल सुबह इंशाल्लाह ताला हमारी आँख खुलेगी तो +3 डिग्री टेम्परेचर। और उसके बाद का देखें तो दोपहर को +6, फ्राइडे को कुछ फ्लरीज के चांसेस है +1, सैटरडे को अगेन सनी एंड कोल्ड +3 डिग्री टेम्परेचर, और संडे को फ्लरीज के साथ +2 डिग्री टेम्परेचर। ये तो बातचीत हो गई कुछ टेम्परेचर्स की आपसे लेके अगले कुछ दिनों तक की। आज का प्रोग्राम जरा फास्ट प्रोग्राम है तो इसमें आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वरना कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा जनाब ऑल डस्ट सॉल्यूशंस के मोहम्मद सिद्दीक साहब से। सिद्दीक साहब की बातचीत आप सुन सकेंगे। उसके बाद फिर राजा बादशाह से आपकी मुलाकात करवाऊंगा और फिर अली यजदानी साहब से मुलाकात करवाऊंगा। 3 मुलाकातें होंगी। इन द मीन टाइम 3:20 पे आप सुन सकेंगे जनाब हमारी आरफा मुजफ्फर जी एंड इम्तियाज गुल साहब का पाकिस्तान से इंटरव्यू। आपको पता है इम्तियाज गुल साहब पहले भी हमारे पास आ चुके हैं यहां पर, ऑथर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सिक्योरिटी स्टडीज। वेरी इंटरेस्टिंग बातचीत आप सुन सकेंगे 3:20 पे। बस इसी तरह चलते भागते दौड़ते हम आपके लिए 5:30 कैसे तक पहुंचेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाना नहीं है आपने। सबसे पहले तो मेरे साथ आई थैंक यू सो मच कि काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं मेरा ऑल डेस्ट सॉल्यूशन के मोहम्मद सिद्दीक साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। 416-671-0577 मोहम्मद सिद्दीक साहब का फ़ोन नंबर है। सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सर कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं?
बहुत मेहरबानी आपका, आपने वेट किया है होल्ड पे एंड ذرا اولڈر سولوشنز اینڈ محمد صدیق کے بارے میں کچھ بتائیے گا.
جی مہیب بھائی, ہم پچھلے 22-23 سال سے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. اگر کسی بھی وجہ سے وہ قرضے میں چلے جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جتنا میکسیمم ہو سکے قرضہ معاف کروا دیں, باقی چھوٹی چھوٹی قسطوں میں بغیر انٹرسٹ کے پے کریں. یا اگر اس کے قرضہ کم ہو اور اس کا کریڈٹ ابھی ٹھیک ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا قرضہ جو ہے وہ لو انٹرسٹ میں کنورٹ کروا دیں اور ان کا انٹرسٹ میں جو پیسہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس کو بچائیں. میرا میسج اسپیشل لوگوں کے لیے ہے کیونکہ آج کل انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہیں, مارگیج کی پیمنٹ آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہیں, اس طرح کریڈٹ کارڈ لائن آف کریڈٹ کی پیمنٹس ڈبل ہو گئی ہیں, تو اپنا پیسہ انٹرسٹ میں ضائع ہونے سے بچائیں. کال کر کے فون پہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. انسیکیورڈ قرضے جو آپ کے ہیں وہ ہم سیٹل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کئی آپشنز اویلیبل ہیں. نمبر ہے 416-671-0577 416-671-0577 پہ کال کر کے چاہے فون پہ انفارمیشن لے لیں یا میری کسی بھی لوکیشن پہ آ کے مجھ سے مل سکتے ہیں. فری کنسلٹیشن ہے, پرائیویسی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. میں خود آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, آپ کا کیس ریویو کروں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ کیا آپ کو ریلیف لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. اگر ریلیف لینا ہے تو کون سا آپشن آپ کے لیے بہتر رہے گا, اگر آپ کو ریلیف نہیں لینا تو کون سے اسٹیپس آپ کو لینے چاہیے تاکہ آگے آپ ڈیپ ڈیٹ میں نہ جائیں. اور گھر بیٹھے یہ ڈیسائیڈ کبھی نہ کر لیں کہ میرے نام پہ ایسٹس ہیں, مجھے ریلیف مل نہیں سکتا, یا ریلیف لے لیا تو مجھے دوبارہ کریڈٹ نہیں ملے گا, مجھے مارگیج نہیں ملے گی. یہ سارے غلط کانسیپٹس ہیں, یہ میں پچھلے 22-23 سال کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اگر آپ گھر بیٹھے بغیر انفارمیشن لیے یہ ڈیسائیڈ کریں گے تو آپ کا پیسہ بھی انٹرسٹ میں ضائع ہو جائے گا, آپ ڈیپ ڈیٹ میں بھی جائیں گے اور آپ کو واپس کریڈٹ بلڈ کرنے میں بھی ٹائم زیادہ لگے گا. اس لیے کوشش کریں گے اس کو انیشل اسٹیج میں دیکھیں. قرضہ چاہے آپ کا کریڈٹ کارڈ پہ ہے, لائن آف کریڈٹ ہیں, پرسنل لونز ہیں, یا انکم ٹیکس کا معاملہ ہے سی آر آئی کے ساتھ پرسنل, یا بزنس کا جی ایس ٹی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, یا بزنس لون ہے, یا اسپانسرشپ ڈیٹ ہے, یا آج کل کافی سارے لوگوں کو لیٹر ملے ہیں سی ای آر بی کے بارے میں جو انہوں نے لی تھی اور وہ ایلیجیبل نہیں تھے. یہ سارے قرضے ہم آپ کے سیٹل کر سکتے ہیں. اس کے لیے مجھے آپ کال کر سکتے ہیں, نمبر ہے 416-671-0577.
جسٹ فار دا بینیفٹ آف آر ویورز اینڈ لسنرز, یہ بتا دیجیے کہ ریڈ فلیگ کب آتا ہے ہمارا؟
اس لیے میں بھائی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ پچھلے 2 مہینے سے منیمم پیمنٹس کیے جا رہے ہیں, یا ایک کریڈٹ کارڈ کا بل دوسرے کریڈٹ کارڈ سے پے کر رہے ہیں, قرضہ چاہے آپ پہ $5,000 کا ہے, $10,000 کا ہے, $1,00,000 کا ہے, اسی وقت اگر آپ ایکسپلور کریں گے آپشن آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کا کریڈٹ خراب ہونے سے بھی بچ جائے, یا اگر خراب ہوتا بھی ہے تو ہم اس کو واپس بہت جلد ری بلڈ کروا دیں گے. اس کے لیے آپ کو 6-7 ہزار تک ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن جو میں نے دیکھا ہے مائز بھائی, 90% لوگ اس وقت کنٹیکٹ کرتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں آپشن جب ان کے سارے کریڈٹ کارڈ بھر چکے ہوتے ہیں, کوئی لمٹ نہیں ہوتی بل پیمنٹس کرنے کے لیے کہیں سے, تو وہ ہمیں کال کرتے ہیں. تو آپ اس ٹائم کا ویٹ نہ کریں گے, آپ کا سارا پیسہ انٹرسٹ میں ضائع ہو جائے, سارے کریڈٹ کارڈ لائن آف کریڈٹ کی لمٹ ختم ہو جائے, اور اس وقت آپ کال کریں. ابھی سے کال کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہے. نمبر ہے 416-671-0577. اور ایک چیز کی میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کا کیس ریویو کرنے کے بعد لوں گا تو میرے آفس سے آپ کو کبھی بھی کسی قسم کا کوئی سرپرائز نہیں ملے گا. جو آپ سے وعدہ کروں گا پہلی میٹنگ میں, اس کے مطابق جب کیس آپ کا اپروو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی پیمنٹ شروع ہوں گی. اس سے پہلے کچھ آپ نے پے نہیں کرنا. اور اگر اس میں آپ کا کریڈٹ خراب ہوتا ہے یا آلریڈی خراب ہو چکا ہے تو ہم آپ کو انرول کریں گے کریڈٹ ریبلڈ پروگرام میں, اور آپ کا کریڈٹ بھی بہت جلد ریبلڈ کروا کے دیں گے. اس کے لیے آپ کو 6-7 تک ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. آپ کے ایسٹ چاہے وہ گھر ہیں, گاڑیاں, آر ایس پی, بزنسز, ان تمام چیزوں کو ہم لیگل طریقے سے سیو کرتے ہوئے آپ کو ڈیٹ فری کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. کچھ آپ لوز نہیں کریں گے, بڑی آسانی سے آپ ڈیٹ فری ہو جائیں گے اور آپ کو کریڈٹ بھی واپس مل جائے گا.
اور کتنا پیسہ لانے پڑے گا آپ کے پاس؟
فری کنسلٹیشن ہے واحد بھائی, جتنی بار آئے کچھ آپ نے پے نہیں کرنا. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو آپ مجھے کیس دیں گے, جو میں وعدہ کروں گا اس کے مطابق اپروو کروا کے دوں گا, اور اس کے بعد آپ کی پیمنٹ شروع ہوں گی. ہماری فیس بھی اس کے بعد ہوگی, وہ بھی منیمم فیس ہوتی ہے, کوئی زیادہ فیس نہیں ہوتی ہماری.
فون نمبر بتا دیں ایک دفعہ.
نمبر 416-671-0577 416-671-0577. لوکیشن اسکارو میں ہے, مارکم الیزمر کے پاس, اٹوبیکو میں ہیڈ آفس ہے کپلنگ اور ریکسل کے پاس, مسساگا میں ہے ڈکسی 401 کے پاس, اور برمپٹن میں ہے ڈکسی بویڈ کے پاس. اس کے علاوہ بھی کینیڈا میں کہیں بھی آپ رہتے ہیں, اگر آپ قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, تو ایک دفعہ کال کر کے فون پہ انفارمیشن لے لیں. اگر کہیں گے تو ہم آپ کو ریلیف بھی دلوائیں گے اور آپ کا کریڈٹ بھی ریبلڈ کروا کے دیں گے. ٹول فری نمبر ہے 1-855-671-0577, جی ٹی اے کے لیے 416-671-0577, 0577 वेबसाइट है www.alldebtsolutions.ch पे जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
416-671-0577 जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब का फोन नंबर है, ऑल डेट सॉल्यूशंस इनका ताल्लुक है, प्लीज गिव हिम अ कॉल। अगर थोड़ा सा भी आप समझते हैं कि छोटा सा प्रॉब्लम शुरू हुआ है आपके साथ, इट डजंट कॉस्ट यू एनी मनी, इनसे कंसल्ट जरूर करें। 416-671-0577 बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
थैंक यू महेश भाई, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। मोहम्मद सिद्दीक से हमने आपकी बातचीत कराई, दो स्पॉन्सर्स के पैगाम, विल बी राइट बैक।
इन्ना सोना कर लिया, हुन अप्लायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अप्लायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, ते टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड का टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 Bowie Drive West Brampton, ya call karo 905-450-2828-905-450-2828.
Learn to drive safely and confidently. Professional driving lessons with HT Driving School in Brampton. Agar eligible hain to sirf 7 dinon mein G ya G2 license lein. MTO approved instructors, early road test arrangements, high passing rate, pick up and drop off, male female instructors aur haan insurance discount certificate. Gaadi chalana seekh lena itna mushkil nahi jitna sahi taur par gaadi chalana hai. Mazeed malumat ke liye call HT Driving School 647-766-5398.
जी साहब, नाज़रीन वेलकम बैक अगेन। एंड अभी तक तो वादों पे चल रहा हूं मैं, आगे देखिए क्या होता है। मैंने कहा था कि इसके फौरी बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अकाल मॉर्गेज से जनाब अली यजदानी साहब से। अली यजदानी साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। यजदानी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप?
कैसे, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए।
अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के लिए और पूरे कंज्यूमर्स जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उन लोगों के लिए तो गुड न्यूज लास्ट वीक आई, लास्ट वीक क्या इसी वीक, कि हमारा इन्फ्लेशन भी डाउन चला गया एंड चांसेस अगेन आई कीप माय फिंगर्स क्रॉस के इंटरेस्ट रेट कम से कम 23 में बढ़ने का कोई आसरा नहीं है।
Mahesh bhai, I think keep your fingers crossed for the next couple of months. 23 to almost a par lagi gaya hai. Sorry, excuse me. 23 to par lagi gaya hai. Aaj 20 ho gayi, 5 hafte reh gaye. So yes, jaise ki tha predicted tha, you know, the inflation fell down to 3.1% and some changes are coming in the market. Jaise ki maine pehle bhi bola tha ki jo fixed rates hai वो ड्रॉप होंगे एंड फिक्स्ड रेट्स हैव स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ। ठीक है, जो बड़े मेजर लेंडर्स हैं, मेजर प्राइम बैंक्स हैं, उन्होंने भी ड्रॉप करना शुरू कर दिए हैं एंड वन थिंग आई विल टेल यू कि वो काफी अग्रेसिव भी हुए हुए हैं। ठीक है, कि अगर वो एक आपको रेट बाहर लेके आते हैं, ठीक है, कि जी अगर मार्केट में वो बाहर या व्हाटएवर, यू नो, दे शो यू वन रेट, लेकिन अगर आपके मॉर्गेज ब्रोकर का, मॉर्गेज प्रोफेशनल का उन लेंडर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है तो they can get you a better rate even then, something better, number one. Number two, जो alternative lenders हैं, B lenders हैं, उन्होंने भी rates जो है, fixed rates, अपने drop करना शुरू कर दिए हैं. So, things are looking a little positive, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि जी बस चलो दिसंबर में ना, जनवरी में हो जाएगा rate drop, तो नहीं. I do not see the prime rate dropping anytime in the very much near recent future. उसमें थोड़ा अभी आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको उसमें थोड़ा सबर करना पड़ेगा कि प्राइम जब यू नो डिक्रीज होने की तरफ आएगा। जी
ना, अगर बढ़ नहीं रहा है तो ये भी एक गुड न्यूज है, एटलीस्ट कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा हमारे परचेजर्स के बारे में।
नहीं, डेफिनेटली 110%, यू नो, इट्स गॉन स्टेबल। इस समय मैंने पहले भी, मेरे आपकी पहले भी बात हुई थी, आई थिंक शायद लास्ट मंथ भी हमारी शॉपिंग में बात हुई थी, जब मैंने बोला था या उससे पहले कि ये अक्टूबर में अब होल्ड करेगा, ये अब नहीं रेज करेंगे। ठीक है, अब जो अब मार्केट ऐसी नहीं है इस वक्त कि अब रेज किया जाए, जो उन्होंने अचीव करना था वो आई थिंक काफी हद तक हो गया है। एक और बात भी मैं कर दूं कि अगर जस्ट अ जनरल थिंग, कि अगर कार्बन टैक्स जिसके ऊपर कंजर्वेटिव्स काफी पीछे पड़े हुए हैं, कार्बन टैक्स को स्लाइस किया जाए, अगर कार्बन टैक्स आपका स्लाइस हो जाता है, सो यस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीजिंग प्राइम इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी बिकॉज आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कट हो जाएगी.
सही.
सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से रेट्स आर गोइंग टू बी कट. लेकिन अब ये जो जिस तरह मैंने कार्बन टैक्स की बात की, ये तो बिल्कुल एक ऑफ था, ये ना मेरे कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में, ये तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है कि क्या करना है क्या नहीं करना. हमारे हाथ में ये है, जैसे कि आपने बताया विद अकाल मॉर्गेजेस, के अपने क्लाइंट को, अपने होम ओनर को एक सीधे रास्ते पे लेके जाया जाए, एक जो उनका मॉर्गेज का जो कठिन उस तरह मरला है उसको साफ किया जाए, उसको आसान किया जाए, उसको मुफीद बनाया जाए. उसके लिए जैसा कि आपने बोला, कॉन्टैक्ट कीजिए
6475109494, 6475109494, 6475109494. जनाब अली यजदानी साहब का फोन नंबर है. आई एम जस्ट गोना डू अ लिटिल हरी अप बिकॉज अली यजदानी साहब का, जैसे आपको मालूम है कि ये हम ये हमारे पास आते हैं मंडे एंड थर्सडे को, मगर मंडे को हम हमारी वजह से नहीं आ सके, ये ट्यूसडे को उनकी वजह से नहीं आ सके.
नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं थोड़ा इंसाफ कर दूं तराजू का. तो आज मैंने इनको बीच में स्क्वीज किया था, बट व्हेनेवर आई स्पीक टू जनाब अली यजदानी साहब, मुझे बड़ी दिल से खुशी होती है कि हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, और जिस तरीके से बात करने का तरीका कार है इनका, अगर आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तो जरूर है कि आप इनसे कुछ फायदा ही उठाएंगे. अली यजदानी साहब 6475109494. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग मॉर्गेजेस, लाइन ऑफ क्रेडिट, हीलॉक, कुछ भी इसके मुताबिक बातें करनी है आपको इनसे, सब जाइए, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, इनसे बातचीत कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली इनसे जब उठेंगे इनके इसकी इनकी महफिल से तो कुछ ना कुछ सीख के उठेंगे. अली जदाजी साहब 6475109494 बेनतहा शुक्रिया सर आपका.
थैंक यू सो मच. ध्यान रखिए अपना, खुदा हाफिज.
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज. अली यजदानी साहब से भी हमने आपकी बातचीत करवा दी. अभी भी मैं सब डेढ़ मिनट मेरा देर हो गई, माजरा चाहता हूँ इसमें, मगर मैंने आपसे कहा था कि साहब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा. मैंने क्या करवाना है, आरफा मुजफ्फर जी मुलाकात करवाएंगी इम्तियाज गुल साहब से फ्रॉम पाकिस्तान, ऑथर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी. चलिए आइए, मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे स्टूडियो में जहां से आप सुन सकेंगे जनाब अली जनाब इम्तियाज गुल एंड आरफा मुजफ्फर जी की बातचीत.
जी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हम अपने आज के सेगमेंट में एक खास मेहमान को आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, एंड आई विश कि ऐसे लोगों का साथ मेरे साथ और आपके साथ रहे, जहां से हम राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वी डोंट वांट एनी सेंसेशनल इंफॉर्मेशन, वी डोंट वांट टू टेक एनी एडवांटेज ऑफ द सर्कमस्टेंसेज इन पाकिस्तान और अराउंड द वर्ल्ड, वी डोंट. जिस शख्स को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, आई टेक द प्राइड, मैंने हमेशा एक लफ्ज कहा कि मेरी पाकिस्तान की फौज बेहतरीन फौज है, मगर अगर कुछ लोग गलत आए तो उनको चाहे नीचे से पांचवी पोजीशन से ऊपर लाया गया, उन लोगों को लाया गया जो अपना सौदा कर सकते थे या उनसे अपनी बात मनवाई जा सकती थी. पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हकीकत में पाकिस्तान के लिए सिंसियर हैं. अनफॉर्चुनेटली वो जो सच के साथ हो, वो जो मुल्क की को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करना चाहता हो, उसको अपने मुल्क के इदारे भी पिक नहीं करते. जिस मेहमान को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जनाब इम्तियाज गुल साहब, एट द मोमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इस्लामाबाद बेस्ड इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के लिए. आप यू कैन इमेजिन व्हाट दिस इंस्टीट्यूशन इज, और इनकी सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस से मुतल्लिक ये अपने काम करते हैं. मजे की बात यह है कि इनकी बेशुमार किताबें हैं, बेहतरीन किताबें हैं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान में इंटरनेशनली ममालिक की इन्फ्लुएंस, टेररिज्म के बारे में भी जिन کتابوں میں بات ہوئی ہے. میں وہی دیکھ رہی تھی کہ ان کی کتاب پاک افغان ریلیشنز انڈر دا طالبان میں ایک پبلش ہوئی تھی, اور اس کتاب کو پینگوئن وائکنگ انڈیا نے پبلش کیا تھا, القاعدہز کنیکشن, یہ ان کی ایک کتاب ہے. اس کے بعد اس کتاب کو دوبارہ ریوائز کیا گیا اور پینگوئن یو ایس یو کے نے اس کو دوبارہ پبلش کیا. گل صاحب بلکہ اس کے بارے میں بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ یہ ایک جو آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہیں جو کہ فوکس ہے سیکیورٹی اور گورننس پاکستان میں, اس پہ کام کر رہی ہے, انہوں نے کتابیں لکھی, انٹرنیشنل جو بھی انوالومنٹس ہیں یا جو چیزیں بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ, یس انٹرنیشنل میڈیا پہ رپورٹنگ بھی کی. جناب امتیاز گل صاحب کی بات میں دیکھ رہی تھی تو صاحب انہوں نے رپورٹنگ کی اردو, انگریزی اور ہندی لینگویجز میں, ڈچ ویلے کے ساتھ انہوں نے اپنی رپورٹنگ بھی کی وہی 1989 میں. امتیاز گل آلسو بین براڈ کاسٹنگ ود دا سی این این ٹی وی بٹوین 1998 اینڈ 2002, سال تک انہوں نے سی این این کے ساتھ بھی اپنی رپورٹنگ کی, اور ود دا ہانگ کانگ بیس اسٹار ورلڈ ٹی وی, جاپانیز نیشنل براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اینڈ دا نیشنل پبلک ریڈیو ان یونائٹیڈ اسٹیٹس. اس کے علاوہ فارن پالیسیز سے متعلق الجزیرہ کے اوپر بھی یہ بے شمار بار بات کر چکے ہیں. اور کیا بات کروں, دوحہ میں الجزیرہ, انگلش عربک سیٹلائٹ چینل کے اوپر بھی انہوں نے اپنی انالیسز مختلف پیش کیے ہیں. جناب امتیاز گل صاحب میرے ساتھ ہیں, سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آنیسٹ گاڈ اٹس امیزنگ, جب میں آپ کی پوری ڈیٹیل دیکھ رہی تھی, امیزنگ, خوش آمدید ساز و آواز کی اس محفل.
شکریہ جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سر آپ کا جب میں اتنا کچھ دیکھ رہی تھی اور پاکستان کی اور پنجاب کی خاص طور پہ اس وقت تقدیر بدلی ہوئی ہے, آئی ایم سرپرائزڈ آپ نے جب رپورٹنگ کی یونائٹیڈ اسٹیٹس میں اور آپ نے سی این این ٹیلی ویژن کے ساتھ 1998 سے 2000 کے درمیان کام کیا, اینڈ آئی واز سرپرائز اس وقت پاکستان کے جناب محسن نقوی صاحب, ہی آلسو ورکڈ وتھ سی این این, اس کے بعد پاکستان میں ایز اے فیسلیٹیٹر انہوں نے کام کیا ٹو ارینج انٹرویوز اینڈ دا پرسنالٹیز. تو ہاؤ کم یو ڈیڈ ناٹ ہیو, یو ورک بفور ہم, یو ڈیڈ ناٹ ہیو دیٹ اپرچونیٹی؟
جی شکریہ آپ نے, میں بڑا ہمبل ہو جاتا ہوں, امبیرسمنٹ ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ میں تو ٹرینڈ براڈ کاسٹر ہوں اور میں 24 سال کی عمر میں دوچے ویلے جرمنی اردو سروس میں میرا انتخاب ہوا بطور براڈ کاسٹر, اور وہاں میں نے 3 سال گزارے. 3 سال گزارنے کے بعد میں پاکستان واپس آ گیا 27 سال کی عمر میں, کیونکہ میں یہیں پہ کریئر بنانا چاہتا تھا. تو اس دوران پھر دوچے ویلے کے ساتھ میں نے اردو, انگلش, جرمن, ہندی اور پشتو, ان سب میں میں نے براڈ کاسٹ کا کام کیا یہیں سے پاکستان سے بیٹھ کے بطور کورسپونڈنٹ. اس کے ساتھ ساتھ پھر سی این این کے ساتھ میں نے پروڈیوسر کے طور پہ کام کیا, لیکن جو جنرل پرویز مشرف کا کو تھا, اور اس سے پہلے 1999 دسمبر میں کندھار میں ایک انڈین طیارہ ہائی جیک کیا گیا تھا, تو اس موقع پہ بھی میں نے پارشلی براڈ کاسٹر کورسپونڈنٹ کے طور پہ بھی کام کیا, تو افغانستان میں کندھار ایئرپورٹ پہ. تو وہ ایک طویل سفر ہے, اور وہ تو سفر میں نے جاری رکھا بطور پروفیشنل صحافی کے. میں کسی کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا غیر ضروری طور پہ, اور کسی کی خوش آمد چاپلوسی نہیں کرتا. تو میں کوشش شروع سے ہی کی ہے کہ آپ اپنا جو آپ کا کام ہے وہی کریں, اور اسی وجہ سے پھر بہت سارے لوگوں کو میں پسند بھی نہیں آیا, چاہے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں, چاہے نواز شریف صاحب تھے, چاہے جنرل پرویز مشرف تھے, ان سب کے ساتھ میرے ٹاکرے ہوئے, اور تینوں نے موقع, اتفاق ہے کہ تینوں مرتبہ تینوں نے مختلف مواقع پہ میرے ساتھ وہ بڑا انکمفرٹیبل ہو جاتے تھے, اس لیے کہ جو ہی میں سامنے آتا تو ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ یہ آپ کو غلط سوال پوچھے گا, یعنی جو بھی آپ سیدھا سوال پوچھنا چاہیں تو ان کا یہ تاثر ہوتا کہ یہ غلط سوال پوچھتا ہے. تو میں نے 1988 میں جرمنی سے واپس آیا, تو اس سے لے کے और अब 2023 तक मैंने 6 किताबें लिखी हैं। पहली वो जो आपने जिक्र किया था वो 2002 में आई, लेकिन जो आपने दूसरी का जिक्र किया अलकायदा कनेक्शन, वो एक नई किताब थी जो इंडियन पेंगुइन ने मुझे कहा कि आप लिखें कि अफगान तालिबान क्या चीज है, और उसी किताब को फिर यूएस पेंगुइन ने और यूके पेंगुइन ने छापा। फिर मैंने एक और उसामा पाकिस्तान बिफोर एंड आफ्टर उसामा इंडिया के एक रोली बुक्स पब्लिशिंग हाउस है उन्होंने छापी। फिर मैंने अभी 2 साल पहले पाकिस्तान चाइना रिलेशंस पे एक और किताब लिखी, हिजब तहरीर पे मैंने किताब भी लिखी, बड़े सारे पेपर्स भी लिखे। तो वो वैसे थे मजमू मेरा फोकस अपना लिखना लिखाना रहा है, क्योंकि अगर आप यस मैन किसी की हाँ में हाँ मिलाने वाले आपकी शख्सियत नहीं है तो फिर आपके लिए किसी जगह पे कोई जिम्मेदारी संभालना बड़ा मुश्किल होता है।
बहुत शुक्रिया सर। सर मैं एक बड़ा अजीब सा सवाल मेरे दिमाग में आया कि पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे सारे पब्लिशर हैं, मैं पेंगुइन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पब्लिशर्स, और यूएसए और यूके से मैं बहुत सारी आपकी 2 बार जो पब्लिकेशन है वो इंडिया से हुई, क्या बात है कि पाकिस्तान में कोई किताब जो हकायक पर मबनी हो क्या पब्लिशर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते या उनको कोई खौफ है, क्या वजह है?
उसमें देखिए पाकिस्तान गुज़श्ता कई दहाइयों से एक लिहाज से जवाल पजीर है। उसमें जब मेरी पहली किताब भी छपी तो आज चले मैं ये बात भी कर देता हूं, वो नजम सेठी साहब के जो वैनगार्ड बुक्स है वहां पे छपी थी। मैं चूंकि फ्राइडे टाइम्स के लिए मैंने 15-20 साल उनका जो रिसाला था तो इस्लामाबाद कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे काम किया, वो जब मैंने इस किताब का आइडिया उन्हें पेश किया उन्होंने कहा हम छापेंगे। अब वो किसी की मदद से हमने वो किताब छापी, बाद में मुझे उसकी रॉयल्टी वगैरह 1 टका नहीं मिला। तो मैंने किसी साहब से बात की, उनके करीब ही काम करने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि जी यहां जब किताब छप जाती है फिर वो बच्चे देती है, आप उसको भूल जाएं, क्योंकि वो कॉपियां पे कॉपियां बिकती रही लेकिन मुझे उसमें से कुछ नहीं मिला। तो फिर मुझे खुद इंडियन पब्लिशर्स ने पेंगुइन ने अप्रोच किया था गालिबन उसी किताब की बुनियाद पे कि आप अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर ले। तो फिर हमने जो टेररिज्म वजीरिस्तान के जो हालात थे उस जमाने में, जो 2009 में फिर हमने वो पहली किताब छपी थी अलकायदा कनेक्शन। तो पब्लिशर्स यहाँ पे बहुत हैं लेकिन यहाँ बेईमानी बहुत है,
बहुत कमाल की बात। मैंने अपने हर प्रोग्राम में ये कहा कि इस कौम का मॉरल फाइबर वीक है, और रिच का तो खास तौर पे, जितने उम्रा हैं उनका तो खास तौर पे, और फिर जाहिर है यही वजह है कि हमारे बेहतरीन लिखने वाले बाज़ोकात बैरूनी पब्लिशर्स के महरूने मिन्नत होते हैं। मैं हर इंसान को कहती हूँ कि प्लीज अपने दिल के अंदर झांकिए, अपने जमीर को बेदार कीजिएगा कि अगर आप ऑनेस्टली शेयर्स को तकसीम करते चले जाएं तो डेफिनेटली टुगेदर वी कैन मेक अ बिगर पिक्चर एंड हैव अ बिगर शेयर। वेरी सैड। एनीवेज सर, आज पाकिस्तान की सूरत हाल, जब मैं आपका जिस इदारे का मैं जिसके साथ इस वक्त आप मुंसलिक हैं और काम कर रहे हैं, और खास तौर पर मैं आपका एक वही देख रही थी कि बिसाइड लूजिंग थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस इन आर्मी लाइफ, पाकिस्तान हैज ऑल्सो सफर्ड सोशो इकोनॉमिकली इन द वॉलेटाइल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट्स हैव ड्रॉप्ड, गवर्नेंस वर्सन्ड, बिजनेस बैडली अफेक्टेड, और एनर्जी क्राइसिस भी, लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ प्लानिंग फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, और अभी आपने कहा कि फ्लडिंग ने और भी 4 चांद लगा दिए। मुझे ये बताइएगा कि आप इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल देख रहे हैं आपका क्या एनालिसिस है? मैंने भी अपनी होश में चीजों को बद से बदतरीन होते हुए देखा है, क्या कोई साहिब इक्तदार महसूस कर रहा है कि वी नीड रिफॉर्म्स एंड वी नीड ब्रिंग पाकिस्तान बैक इनटू अ गुड स्टेट, इकोनॉमिक स्टेट?
इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर क्वेश्चन, इसलिए कि हम हर रोज यही ग्रैपल करते रहते हैं इस चीज के साथ कि पाकिस्तान में हालात क्यों खराब हुए हैं। मैं बड़े अरसे से इस बात पे सोच रहा हूँ, फिक्र कर रहे हैं। आई थिंक एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू द रूल ऑफ लॉ। आप जमहूरियत को देख लें, आप गवर्नेंस को देख लें, आप बेरूनी सरमाकारी को या पाकिस्तान में जो बिजनेस एनवायरमेंट है उसको देख लें, हर चीज का ताल्लुक बुनियादी तौर पे रूल ऑफ लॉ से। यानी अगर आपने किसी गैर मुल्की कंपनी के साथ मुआहदा किया और उस मुआहदे की आप पाबंदी नहीं करते, या आपकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उठाकर उस मुआहदे को कैंसिल कर देती है, तो वो पैगाम क्या जाता है? यानी कि आप अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उसको ऑनर नहीं करते हैं। इस तरह जब आप बात करते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम इदारा है, लेकिन पार्लियामान का जो लीडर होता है उसको आप बराए रास्त या बिल वास्ता उठा के फेंक देते हैं, तो मुकम्मल तौर पे जो आईन है, आईन में जो चीफ एग्जीक्यूटिव का किरदार है वो तलपट हो जाता है। फिर जो हमारा गवर्नेंस का निजाम है और उसके ऊपर एक ऑक्टोपस की तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो जिसको हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है वो बैठा हुआ है, वो हर वक्त लगे रहते हैं इस उम्मीद इस तरीके मजीद फंड खींचने में उन लोगों से जो कि ऑलरेडी उनके रेडार पे हैं। यानी ये भी एक अफसोसनाक पहलू है कि एक इतना बड़ा इदारा मौजूद होने के बावजूद हमारे यहां टैक्स देने वालों की, बराए रास्त टैक्स देने वालों की शरह आज भी 2% से ज्यादा नहीं बढ़ सकी है। यानी जो आप साहिब इकतदार की जो आपने बात की वो आज तक या तो समझते नहीं है या फिर इसको समझना नहीं चाहते हैं कि एक इदारा जो कि गुज़श्ता 70 बरस से काम कर रहा है, लेकिन उसके होते हुए आपकी टैक्स दे बराए रास्त टैक्स देने वालों की शरह जो है वो 2% से बढ़ नहीं सकी, और उसमें भी आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो कहते हैं हमारा टैक्स ही नहीं था। यानी जो जिस रिजीम के तहत, जिस निजाम के तहत ये चल रहा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पाकिस्तान की रियासत के रेवेन्यू के जराए, वो अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उस निजाम में कोई खराबी है। लेकिन किसी ने इसको बदलने की इस अंदाज में कोशिश नहीं की कि आप लोगों को ये तसल्ली दें कि आप टैक्स दें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, अपनी मर्जी से दें। यहां तो वो कहते हैं एक एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन बन गया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कि जो आपके रेडार पे एक दफा आ गया उसको आप खींचे। यही वजह है कि गुज़श्ता 35-40 बरसों में पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सरमाकारी नहीं आई, सिर्फ वही सरमाकारी आई है जो कि पहले से यहां कुछ मौजूद इदारे थे वो अपना R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन उसमें कर देते हैं, और इसके अलावा 2015 के बाद से चीन ने भी 25-26 अरब डॉलर लगाए। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की सरमाकारी नहीं आई, और मैं आपको ये अच्छी अथॉरिटी की बुनियाद पर कह रहा हूं उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो टैक्स के मामले में किसी भी सरमाकार को एक साल से ज्यादा यकीन दहानी नहीं करा सकता कि हम टैक्स शरह तब्दील नहीं करेंगे। जिसकी वजह से जितने यहां पे तो बल्कि बहुत सारे ऐसे दर्जनों इदारे पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि यहां पे सिक्योरिटी के हालात खराब हैं, सिक्योरिटी के हालात तो हमारे बॉर्डर एरियाज में होते हैं, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। असल वजह है कि यहां पे जो गवर्नेंस रिजीम है दैट्स नॉट बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन कि वो आप सोचें कि जी इसको आप वसीउल बुनियाद कैसे कर सकते हैं टैक्सों के निजाम को ताकि हर बंदा खुद ही टैक्स देने पे आमादा हो जाए, वो यहां पे नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहां कोई सरमाकारी नहीं हो रही। अब आप और अगला कोई सवाल हो तो पूछिए, फिर मैं
ये इसी से मुतल्लिक एक सवाल अगर मुख्तसर अगर आप जवाब देना चाहें तो। अब एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट हर चीज में है, ठीक है, आज 18वीं तरमीम के हवाले से भी मैं बात करूंगी, बट क्या वो इस कोर इश्यू को नोट नहीं करते एंड कैन दे ब्रिंग अ चेंज, दे कैन अदालत में इंटरफेयर करने के बाद वहां चेंजेस आ जाते हैं और चीजों के बीच में चेंजेस आ जाते हैं, तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट इस टैक्स के लिहाज से और इन चीजों को क्यों नहीं चेक करती, बजाय इसके कि कासा लेके हर मुल्क के पास हमारा प्राइम मिनिस्टर भी जाता है, हमारा सदर भी जाता है, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जाते हैं, व्हाई नॉट दे कंट्रोल दीज इश्यूज इनसाइड पाकिस्तान?
काश के एस्टैब्लिशमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक्सपर्ट होती, काश के एस्टैब्लिशमेंट सोशियो इकोनॉमिक गवर्नेंस की एक्सपर्ट होती, बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। उनका अपना ہماری مسلح افواج کا اپنا ایک فریم ورک ہے جس کے تحت ان کی پرورش ہوئی ہے, پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کاکول سے لے کے پھر ایئر ہیڈ کوارٹرز, نیول ہیڈ کوارٹر اور جی ایچ کیو تک, اپنا ان کا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے. تو اس میں ان کے بس کا کام نہیں ہے, یعنی وہ پیچ ورک تو کر سکتے ہیں لیکن اس ملک کے لیے جو طویل المیاد حل ہیں وہ صرف ٹیکنوکریٹس, جو فائنینشیل مینجمنٹ کے, جو ہماری ایم پی ایز جس کو مینجمنٹ کنسلٹ ایکسپرٹس جو ہیں, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, اکانومسٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک آپ ان کو فری ہینڈ نہ دے دیں. جہاں پہ جس ملک میں اگر مسلسل حکومت یا ریاست قرضوں پہ چل رہی ہے وہ ریاست کبھی بھی وائبل نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک آپ بنیادی کچھ اصلاحات نہ کر دیں, اور اس پہ کوئی بھی راضی نہیں ہے. عمران خان نے کوشش کی تھی, وہ بھی پھر عمران خان کا نام آ گیا, انہوں نے کوشش کی تھی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو میں تھوڑی اصلاحات کی جائیں. اس وقت جب شبر زیدی چیئرمین تھے, تمام 32 بڑے کمشنر ہیں, ان کو چیف کمشنر یا کمشنر کہتے ہیں ایف بی آر کے, ان سب نے پین ڈاؤن کر دیا, ہڑتال کر دی عملاً. انہوں نے کہا کہ ہم کام نہیں کرتے, کیا آپ ہمارے اوپر یہ اصلاحات کا سلسلہ کدھر آ گیا ہے. تو آپ یقین مانیے کہ عملاً عمران خان وزیر اعظم کو ان کو اپنے دفتر میں بلا کے ان کو یقین دہانی کرنی پڑی کہ ہم کوئی ریفارم نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنا کام جاری رکھیں. یعنی انہوں نے بلیک میل کیا اور وہ اصلاحات کا جو پروگرام بنایا تھا وہ وقتی طور پہ انہوں نے پھر شلف کر دیا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی طاقتور وہ لابی ہو گئی کہ صرف خود کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک کا جو طویل المیاد مفاد تھا جو کہ مضمر ہے, صرف اسی وقت محفوظ ہوگا جب آپ کا ریونیو بڑھے گا. میں اس بات کو اس در ختم کرتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کا جو ذرائع آمدن ہے وہ مثال کے طور پہ 9,000 ارب ہیں. گزشتہ سال میں 9,000 ارب کی آمدنی تھی ہماری, 16,000 ارب روپے کے اخراجات تھے, جبکہ صرف ہماری ڈیٹ سروسنگ جو تھی وہ 11,000 ارب تھی. آپ اندازہ لگائی کہ صرف ہم نے پرانا قرضہ واپس کرنے کے لیے بھی قرضہ لیا. تو اس صورت میں یہ ریاست کیسے چلے گی, یہ جب تک یہ ہر بندہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام نہیں کرے گا, مخصوص جو ایکسپرٹس ہیں ان کے حوالے کام نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا اس ریاست کا وائبل ہونا.
کمال ہے سر, بالکل جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا نا, اس ملک میں جو ایماندار ہے نا اس کو کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا, یا کوئی اس کو اپنا ہاتھ پکڑانا نہیں چاہتا کوئی, کیونکہ پھر تو چینج ہو جائے گا نا. پاکستان ترقی کی منازل طے کرنے لگے گا, انفارچونیٹلی پک ہی اس کو کیا جاتا ہے جو لپ سروس زیادہ دے, یعنی لوگوں کو سنانے میں بڑا کچھ سنا دے مگر حقیقت میں اس ملک کی عوام کا حالت مت بدلے. آپ نے, میں ریکیپ کرنا چاہتی ہوں کہ آمدن ہماری 9,000 ارب اور اخراجات 16,000 ارب اور قرضے کی صرف قسط ادا کرنا, سود پے کرنا وہ 11,000 ارب. کیا وجہ ہے کہ آج میں پاکستان میں اتنی پروٹوکالز دیکھتی ہوں, ہمارے لیڈرز فرسٹ کلاس سروس میں اپنے ڈیلیگیشنز کے ساتھ اراؤنڈ دی ورلڈ ٹریول بھی کرتے ہیں, پاکستان میں بیوروکریسی نے, میں نے سارے عمران خان نے بے شمار غلطیاں کی مگر عمران خان کو بیوروکریسی نے ساتھ نہیں دیا تھا ان کا. میرا خیال ہے سب سے زیادہ وہ 3.5 سال میں جو نقصان کا باعث بنا تھا آپ کے بیوروکریٹس بنے تھے. کوئک ورڈز اباؤٹ دس.
جی بالکل, اس میں نے تو جنوری 2019 میں ایک پہلا آرٹیکل لکھا تھا, ایک اوپن لیٹر ٹو عمران خان ان کی حکومت کے 6-7 مہینے کے بعد ہی, کہ آپ کو بیوروکریسی نے گھیر لیا ہے, خدا کے لیے آپ ان کے آگے گھٹنے نہ ٹیکیں. لیکن وہ کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی, وہ بات ان تک
پہنچنے نہیں دیا اس کو, بالکل
بات ہی نہیں پہنچنے دیتے تھے نا جی. اور اس میں اگر کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر پی ٹی آئی کے زوال کے اوپر اس کی اگر قبر پی ٹی آئی کے زوال کی اگر قبر بنی اور اس پہ اگر کوئی کتبہ لگا تو سر فہرست نام ہوگا اعظم خان کا اور اس کے بعد عثمان بزدار کا, کہ یہ وہ دو لوگ تھے جو عمران خان کی جڑوں میں بیٹھ گئے, جنہوں نے اس کو گمراہ کیا, بدنامی کا ذریعہ بنے, اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کو کہاں ہیں.
ویری سیڈ سر, ویری سیڈ. اس ملک میں, اس ملک کی بدقسمتی, جب سے یہ ملک بنا 1947 से लेके आज तक कि अगर कोई सनसियर आया या तो उस पर एलिगेशन आ गए या उसको मुल्क बदर कर दिया गया या उसको मार दिया गया। सर आज पाकिस्तान में अभी आपने बल्कि एक और मुआहदों की जब बात की थी कि वो रेकोडिक का मुआहदा भी जो किया था दरमियान में तोड़ दिया, ठीक ठाक फाइन हुआ। सुना है कि अब सऊदी अरेबिया के पास पाकिस्तान के मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन जा रही है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट?
देखिए वादे तो बड़े हैं।
अच्छा,
हर तरह से वादे बड़े हैं। वो बदकिस्मती जिन लोगों ने वादे सुने थे उनकी बदकिस्मती है कि फलस्तीन में जंग शुरू हो गई गाजा में, और उधर से सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात की ओर से जवाब यह है कि आप फिलहाल जरा इंतजार करें, हम इधर अपने बखेड़ों में फंस गए हैं। तो उसमें देखें, ये जब तक, मैं फिर बात वही करूंगा कि जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की सदा नहीं गूंजेगी, जब तक गैर मुल्की सरमायाकार को इस बात का 200% यकीन नहीं होगा कि उनके साथ कोई हाथ नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आएगी। अभी अल्लाह करे कि आराम को पाकिस्तान आ जाए, ग्वादर के पास ऑयल रिफाइनरी बनाए, उस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान का भी भला होगा, अल्लाह करे कि वो हो। अब किन हालात के तहत होता है अभी पता नहीं है, क्योंकि वो अगर वो रिफाइनरी लगेगी भी तो उसमें 5-6 साल लगेंगे उसको डिवेलप होने में। असल मसला फिर वही आ जाता है कि जब तक इस मुल्क में आपका अवाम से मुंसलिक जो रिप्रेजेंटेटिव निज़ाम है, जिसको जमहूरियत कहते हैं, जमहूरी अमल, वो तसलसल के साथ अनइंटरप्टेड नहीं चलेगा, उस वक्त तक ये जो टिंकरिंग विद द सिस्टम जो होती है कि हर 2-3 साल के बाद कुछ लोगों को मरोड़ उठता है कि हालात बड़े खराब हो रहे हैं लिहाजा हमें कुछ करना चाहिए, वो जो कुछ करने का मरोड़ होता है वो पाकिस्तान की जड़ों में बैठा हुआ है। और उसमें होता यह है कि हो सकता है उनकी नीयत खराब ना होती हो, लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि सिर्फ नीयतों के बल बोते पे अगर होता तो इमरान खान कभी पाकिस्तान में उनकी हुक्मरानी में बहुत सारे मसाइल हल हो चुके होते। लेकिन चूंकि उनका ताल्लुक हार्ड कोर गवर्नेंस के साथ था और हार्ड कोर गवर्नेंस ब्यूरोक्रेट के हाथ में थी, जिसकी वजह से उनके इर्द गिर्द जो हसार बना वो उसमें से नहीं निकल सके। यही हाल पिंडी में, पिंडी वालों का भी है। वो भी हाउएवर वेल इंटेंडेड, उनकी नोबल इंटेंशंस होती होंगी, लेकिन जब अमली तौर पे वो गवर्नेंस के मैदान में आते हैं तो वो फिर दीवारें खड़ी हो जाती है पूरे गवर्नेंस सिस्टम के अंदर, फौजी और सिविलियन के दरमियान एक जो दीवारें इधर थी वो यहां पहुंच जाती हैं, उसके नतीजे में फिर जगह कदम कदम पे ऑब्स्ट्रक्शन आती हैं। और इनको भी एहसास नहीं होता कि जब तक इस मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पैदा नहीं होगी, जब तक FDR रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक वन विंडो, वाकईतन वन विंडो नहीं बनेगी, जब तक पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए, सरमाकारी को प्रमोट करने के लिए सिक्योरिटी प्रिज्म को नहीं हटाया जाएगा और मुकम्मल हकीकी खालिस्तन बिजनेस प्रिज्म जब तक अप्लाई नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान में सरमाकारी नहीं हो सकेगी। बड़ा डॉन्टिंग, बहुत बड़ा चैलेंज है।
बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मेरे तो मतलब आपसे बात करने के बाद, आपने तालिबान पे जिस लेवल पे काम किया है अफगानिस्तान के साथ, दुनिया की सूरत हाल, पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो है ना, हमें वो मार रही है। सबको जरूरत भी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान एज ए बैरियर भी इस्तेमाल हो रहा है। मगर सर इस वक्त आज पाकिस्तान में बहुत सारी और चीजों के बाद शुनीद के साथ साथ एक शुनीद है, 18वीं तरमीम आई थी परवेज मुशर्रफ, सॉरी जरदारी साहब के दौर में आई थी, तो मुझे तो लगता है कि वो बहुत बेहतर थी। मगर सुना है कि हमारे बाज़ इदारों को और मुस्लिम लीग नून की रिजर्वेशंस हैं 18वीं तरमीम से, और उसमें वो जो 100 के करीब तब्दीलियां की गई थी उनमें रद्द बदल होने जा रहा है। एक तो ये कि कोई प्राइम मिनिस्टर अगर रहे तो उसको 2 साल की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कैन बी प्राइम मिनिस्टर फॉर एवर और फॉर 10 टाइम्स एज लॉन्ग एज ही वॉन्ट्स। सुना है कि इमरान खान के दौर में भी ये थोड़ी सी शुनीद आई थी कि 18वीं तरमीम में तब्दीली होना चाहिए। अब ایک اس کی ریزرویشن مجھے بڑی عجیب سی لگی، آپ اس کو اگر ایکسپلین کر دیں. میں نے جتنا 18ویں ترمیم کو سمجھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے پاس اختیارات کمپیریٹیولی زیادہ ہیں، صوبوں کے پاس کم ہیں. مگر اگر یہ ریورٹ کرتے ہیں تو صوبوں کے پاس اختیارات چلے جائیں گے. مگر کہا جا رہا ہے، جو بعض انالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 18ویں ترمیم میں یہ تبدیلیاں دوبارہ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو صوبے زیادہ رزسٹ کریں گے اس کو. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ وفاق سے اختیارات لے کر صوبوں کو منتقل کرنا، تعلیم، صحت، ثقافت، ماحول، خوراک، یہ تمام وفاق سے لے کے صوبوں کو ڈائریکٹ کنٹرول اس کا دے دیا جائے گا. مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو ریورٹ کیا گیا تو صوبوں میں احساس محرومی بڑھ جائے گا. کچھ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. یعنی ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ابھی پچھلی حکومت نے کتنی بے شمار ترامیم کر چھوڑی اور کتنے بل پاس کر سکے، کسی نے پڑھا بھی نہیں. آج اب یہ معاملہ ہے، کیا فرمائیں گے؟
یہ بھی ایک بھیڑوں کا چھتا ہے، 18ویں ترمیم.
اچھا
دیکھیں، اس میں کوئی اس وقت آئین کے 104 آرٹیکل تھے، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس 18ویں ترمیم کے تحت کسی بھی پارٹی کا سربراہ جو ہے اس کو عملاً بادشاہ بنا دیا گیا. یعنی اس پارٹی کے جتنے بھی ارکان اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ اس کی مرضی کے بغیر ووٹ نہیں ڈال سکتے. اگر ووٹ ڈال دیں گے تو پارٹی سے ان کو نکال سکتا ہے. اول تو بات یہ تھی. دوسری جو سب سے بڑی بات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ اختیارات مرکزی حکومت کے پاس زیادہ ہیں، لہذا اس کو ارتکازے جو اختیارات ہیں اس کو ختم کرتے ہیں، صوبوں کو ہم تھوڑی خود مختاری دیتے ہیں. صوبوں کو خود مختاری دے دی، کچھ وزارتیں تھیں تعلیم، صحت، ٹورزم وغیرہ، وہ انہوں نے صوبوں کو منتقل کر دی.
اور
نہیں، وہ میں ذرا ایکسپلین کر لوں جی.
سوری،
اس وقت اچھا تو تھا، لیکن جو 5-6-7 مہینے کا کام ہوا اور اس کے بعد آپ نے فوراً ہی وزارتوں کو تحلیل کر کے مرکزی سطح پہ اور صوبوں کو دے دیا. صوبوں میں لوگ تیار ہی نہیں تھے اس کے لیے، ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اس حساب سے ان کے پاس سٹاف نہیں تھا. تو جو برا حشر پھر گورننس کا ہوا اس کے نتیجے میں، وہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکے. لوٹ مار زیادہ ہوئی، گورننس پھر کم ہوئی. ٹھیک ہے جی. دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ آپ کو آٹانومی تو مل گئی، یعنی صوبوں کو خود مختاری مل گئی، لیکن ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو تھی وہ ختم ہو گئی. یعنی ہوتا یہ ہے کہ پاکستان جو نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت 57% کے قریب قومی وسائل جو ہیں وہ صوبوں کو چلے جاتے ہیں. اب وہ تو چلے جاتے ہیں، سال جتنا پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے اس میں 57% 4 صوبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. صوبے پھر یہ کہتے ہیں کہ پیسے آپ نے ہمیں دے دیے، اب آپ نے پوچھنا نہیں ہے کہ یہ ہم خرچ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی مالی وسائل انہیں چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہیے. اسی وجہ سے بلوچستان اور سندھ میں انتہائی برا حال ہے کرپشن کا. گزشتہ 15 برسوں کے دوران، 13-14 برسوں میں جتنی لوٹ مار ہوئی ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اب ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ بہت سارے ترقیاتی منصوبوں کے لیے پاکستان کو قرضے ملتے ہیں ورلڈ بینک سے، آئی ایم ایف سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. وہ منصوبے ہوتے ہیں صوبوں میں. صوبے کو چونکہ آپ نے پیسے دے دیے، اب اس نے کیسے پرفارم کیا، کیسے وہ پیسے خرچ ہو، کہتے ہیں ہم سے نہ پوچھیں، قرضہ دینا ہے پاکستان کی حکومت نے. جب پاکستان کی حکومت کے پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے، پیسے تھے وہ دے دیے، اختیار آپ کا نہیں ہے پوچھنے کا. پھر دوسری طرف ہمارا، چونکہ جو میں نے پہلے بات کی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے تحت ہماری آبادی کے حساب سے ہمارے وسائل نہیں بڑھے ہیں، وہ بلکہ آبادی کے حساب سے پروپورشنلٹی شرنک ہوتے گئے ہیں، کیونکہ ہمارا ڈیفنس بجٹ بڑھتا چلا گیا ہے، ان کی پینشنز بڑھتی چلی گئی ہیں. سو 18ویں ترمیم کی وجہ سے بگاڑ بہت زیادہ آیا، اس لیے کہ اس کے لیے اس انتقال اختیارات کی تیاری نہیں کی گئی تھی. اور اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ رفتہ 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 کرنچ کس کو محسوس ہوئی؟ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ 57% جب آپ ریسورسز دے دیتے ہیں صوبوں کو तकरीबन 57%,
डिफेंस के लिए कुछ नहीं बचता,
बाकी 43% मरकजी हुकूमत के लिए बचते हैं। मरकजी हुकूमत में फिर आपने डिफेंस बजट भी देना है, फिर आपने डेट सर्विसिंग भी करनी है, तो गवर्नेंस बाकी हुकूमत के लिए मुश्किल से 5-10% भी नहीं बचता। अब तो ये हाल हो गया है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस गुज़िश्ता एक साल के दौरान शहबाज शरीफ का जो टाइम था, हमारे अखराजात 16,000 अरब थे, हमारी आमदनी 9,000 अरब थी और हमारी डेट सर्विसिंग जो थी वो 11,000 अरब थी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त ये रियासत अमलन कर्जों पे चल रही है और इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो महदूद होता चला गया है, नई सरमाकारी नहीं हुई है, हम नया निज़ाम अपना खोल नहीं रहे हैं, वो एक ऑक्टोपस की तरह FBR बैठा हुआ है। तो एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको आसान लफ्जों में
बयान कर दूं। इसका सलूशन क्या है?
मेरे पास कोई सलूशन नहीं है, देखिए मैं तो कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट
नहीं
हूं।
आप एक्सपर्ट हैं, मगर लुकिंग एट गवर्नेंस प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज, तो कैन यू प्रपोज और अंडरस्टैंड के उसमें कोई इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, बट एनीथिंग इन योर माइंड?
देखिए जी, हर काम उसी को होता है, उसी को साजता है जो उसने पढ़ा हो। तो जब तक आप अगर इकोनॉमिस्ट को लेते हैं उसको अगर इख्तियार नहीं देते तो क्या फायदा उसका? आप कोई टेक्निकल एक्सपर्ट अगर किसी इंजीनियर को ले आए, बल्कि किसी डॉक्टर को ले आए, महकमे सेहत उसको दे दें और उसकी बात ही अगर कोई नहीं सुनता है तो क्या खाक काम करेगा? सो मसला बुनियादी पाकिस्तान में यह है, रूल ऑफ लॉ का है, जॉब डिस्ट्रीब्यूशन का है, जो लोग अपना अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सक रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान तो बिल्कुल स्टैग्नेटिंग।
लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जाहिर है चाइना अगर पाकिस्तान CPAC में गड़बड़ करता है तो चाइना अफगानिस्तान और ईरान से होके देर आर 5 अदर वेज जिसमें चाइना गर्म पानियों तक और बहिरा अरब तक पहुंच सकता है। चाइना उभरती ताकत है और अमेरिका ने, जो बाइडेन ने ये लफ्ज कहा है कि डिसाइड होगा अब कि हु विल रूल फॉर नेक्स्ट 2 decades, ये उनके अपने वर्ड्स थे, हमने इनको कवर भी किया था। तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है दैट इज समथिंग बड़ी सेंसिटिव है। अमेरिका चाइना को CPAC को लाने नहीं दे रहा, CPAC इज द ओनली वे और चाइना इज द ओनली कंट्री जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करना चाहता है। उसको डिफेम करने के लिए लोग ये भी कहना शुरू हो गए कि जी चाइना पैसा लगाता है उसके बाद मुल्कों को बैंकरप्ट कर देता है। अमेरिका डेफिनेटली पाकिस्तान को छोड़ने की भी पोजीशन में नहीं है, तो इसके बारे में क्विक वर्ड्स अगर आप कहना चाहें, अदरवाइज इट्स ऑल अप टू यू।
देखिए तो बड़ा एक बजाते खुद इस पर आपको एक अलग प्रोग्राम करना चाहिए, वो इसलिए कि आप शुरू में बात की थी आपने कि हमारे जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि उसकी वजह से हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए। पाकिस्तान का नंबर वन मसला, पाकिस्तान का नंबर एक दुश्मन पाकिस्तान के अंदर है, बाहर नहीं है। ये हम तो चूंकि एक नैरेटिव सुनते आ रहे हैं ना कि हमारी जियोग्राफियाई इक्वेशन की वजह से पाकिस्तान बड़े मसाइल में है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल की बहुत बड़ी जड़ पाकिस्तान के अंदर है, वो हमारे अपने लोग हैं, वो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, और अगर CPAC खराब होगा तो वो भी उन्हीं की वजह से होगा। बाकी जहां तक चीन का ताल्लुक है, चीन कोई ऐसा नहीं है कि मतलब पाकिस्तान ये नहीं कि कोई दूध पीता बच्चा है कि चीन उसका हाथ लेके चलता रहेगा और उसकी गलतियों पर पर्दा वो डालता रहेगा। चीन ने गुज़िश्ता 6-7 साल में पाकिस्तान से बहुत सीखा है, उन्होंने बहुत मेहरबानी की, बड़े मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। एक ऐसे वक्त में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहां से गैर मुल्की कंपनियां अपना सौदा सरफ अपना कारोबार समेट के जा रही थी, दुबई चली गई, वियतनाम चली गई, बांग्लादेश चली गई, यहां हमारे टेक्सटाइल टाइकून्स हैं उन्होंने बांग्लादेश में अपनी सनतें मुंतकिल कर दी क्योंकि उन्हें यहां पर मजा नहीं आ रहा था। सो उसकी वजह से चीन जो है ना, चीन ने बड़े वो एक और मिजाज की कौम है, वो एक दफा आप उनका एतमाद हासिल कर रहे हैं वो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जाहिर है उस इज्जत की देख लिमिटेशन ये होती है, ये नहीं होता कि आप उनको छुप छुप के लगाते रहें, दूसरों के साथ साज बाज करें।
और सर उसको वो अगर कोई कचोके लगाते तो चाइना उसको माफ भी नहीं करता, दे वोंट से बट दे वोंट उसको छोड़ेंगे भी नहीं
जी। मैं चीन को मैं 13-14 वर्षों से जानता हूँ। उस माइंड मैंने उस पर जो किताब लिखी उसका मकसद यही था कि व्हाट लाइज बिहाइंड द आयरन ब्रदरहुड। वो मैंने उर्दू में भी तर्जुमा किया उस करवाया अभी छापा है और इंग्लिश में भी छापा था। तो अगर आपको भी चले मैं कभी आऊंगा तो आपके लिए ले आऊंगा किताब।
सर दोस्तों का मकसद ये नहीं होता कि हम एक दूसरे के ऊपर, मैंने आपसे कहा दोस्ती ये नहीं है कि हम एक दूसरे का बेनिफिट लें, वी हैव टू स्ट्रेंथन ईच अदर। सर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं बताएं। मैं एक बात अपने सामईन से कहना चाहती हूँ, यू आर द जजेस। आप देखिएगा प्रोग्राम सब देखा कीजिएगा, आप देखें कि क्या कैप्शन जो है बड़ी अल्फाज कुछ और है, मगर प्रोग्राम में अगर वो चीजें नहीं है तो प्लीज उन चीजों को चेक